أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيدة الجليلة الجميلة المعصومة المظلومة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. پروردگار عالم قرآن پاک میں اپنے نبی سے یہ فرما رہا ہے، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى، کہہ دیجئے میں تم سے امر رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے محبت کے میرے قرابت داروں کی. قرآن میں محبت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے. ایمان جتنا زیادہ اور مضبوط ہوگا، محبت اہل بیت اسی قدر مضبوط ہوگی، اور اس محبت کا فائدہ مومنین ہی کے لیے ہے، ورنہ اجر رسالت تو اللہ کے ذمہ ہے، جیسا کہ پروردگار فرما رہا ہے، مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، کہہ دیجئے میں نے نہیں مانگا تم سے اجر رسالت کا، مگر وہ بھی تمہارے ہی فائدے کے لیے. تو ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس کا جواب بھی قرآن میں پروردگار نے دیا. کہہ دیجئے میں نے نہیں مانگا اس امر پر، یعنی رسالت پر، تم سے کوئی اجر سوائے اس کے کہ جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کا راستہ. اور دعائے ندبہ میں کہا گیا کہ در حقیقت اہل بیت راستہ ہیں خدا تک پہنچنے کا، اور راہیں ہیں جنت تک پہنچنے کے لیے. لہٰذا جس قدر محبت زیادہ ہوگی، اسی قدر ایمان میں اضافہ ہوگا. نجات ابدی حاصل کرنے کا اصل رکن محبت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور ذکر فضائل اہل بیت کرنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. خدا نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ انسان اچھائی کو پسند کرے، مثلا سخاوت، شجاعت، حیا، عفت وغیرہ کو پسند کرے، اور اس کی مخالف چیزوں سے نفرت کرے. انسان کو جس کسی میں خوبیاں نظر آئیں گی، انسان اس سے محبت کرے گا. اور جب یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اصل خوبیاں تو فقط محمد والے محمد میں ہی پائی جاتی ہیں، تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے. آیت اللہ دست غیب شیرازی کہتے ہیں کہ اہل بیت کی یاد میں مجالس کا انعقاد کر کے ان کے فضائل بیان کرنے کی کیا فضیلت ہے، کس قدر اجر و ثواب ہے. یہ وہی مجلس ہوتی ہے جس سے ملائے اعلیٰ کے فرشتے عطر سے زیادہ خوشبو لے کر جاتے ہیں، اور جب دوسرے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ یہ اعلیٰ ترین خوشبو تم کہاں سے لائے ہو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسی مجلس میں شرکت کر کے آ رہے ہیں جس میں علی اور اولاد علی کا ذکر ہو رہا تھا. تو وہ فرشتے یہ بات سن کر علی اور اولاد علی سے اپنی محبت کو اور زیادہ کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھنے کو بہت ہی مہیر العقول فضیلت سے تعبیر کیا گیا ہے. تاکہ اس مناسبت سے لوگوں کی ان سے محبت اور زیادہ ہو. اہل بیت کی یاد میں منعقد کی جانے والی مجالس انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اور ان مجالس کو، محافل کو خدا پسند فرماتا ہے. یہ مقدس ہستیاں محمد و آل محمد علیہم السلام کسی ذکر کے محتاج نہیں ہیں. क्योंकि इनके फजाइल कमालात सब खुदा दाद हैं, कोई समझे या ना समझे, कोई याद करे या ना करे, इनके मकाम व मंजिलत में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनके फजाइल व कमालात और मोजज़ात के ज़िक्र और नशर व इशाअत का जो इंसान को शौक़ दिलाया गया है, उसका फ़ायदा फ़क़त मोमिनीन के लिए है। क्या फ़ायदा है? कि मोमिनीन ज़िक्र अहले बैत की बरकत से क़ुर्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद के दर्जात को हासिल कर सकें, ईमान में मोहब्बत में इजाफा हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि अहले बैत रसूल अलैहिस्सलाम में जो सिफात कमालियाँ हैं उनमें गौर व फिक्र किया जाए। मसलन उनका तकवा कितना था, इबादत, जोहद, शुजाअत किस मंजिल पर था, हिलम, अफू दरगुजर, जोद व करम किस मकाम पर है। दूसरा ये कि उन नेमतों में गौर व फिक्र करना चाहिए जो अहले बैत के वसीले से खुदा की तरफ से हम तक पहुंचती हैं और पहुंचती रहेंगी। और किस कदर मुसीबतें और दुश्वारियां हैं जो हमसे अहले बैत के तुफैल में दूर होती हैं, ये सब अहले बैत रसूल के तुफैल में जितनी भी मुश्किलात दूर होती हैं उन्हीं मुकद्दस हस्तियों के सदक़े में है। तीसरी चीज़, अताअत और ताबेदारी करना, यानी हुक्म अहले बैत की तामील करना और अपने कौल व फेल में उनकी इक्तदा करना। लिहाजा जिस कदर ताबेदारी ज़्यादा होगी उसी रफ्तार से मोहब्बत में इजाफा होगा। मुहक्किकीन और मुफस्सरीन अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले ज़मख़शरी इस रिवायत को नकल करते हैं कि नबी ने ये फरमाया कि फ़ातिमा, अली, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम वो हैं जिनकी मवद्दत जिनकी मवद्दत को खुदा ने वाजिब फरमाया है। उनमें फ़ातिमा मेरे दिल की जान हैं, अली मेरी आँखों का नूर हैं, रिवायत के अल्फाज हैं, अली कुर्रत आइनी, और हसन और हुसैन मेरे मेवाए दिल हैं, और मेरे वसी जो नस्ले हुसैन से होंगे वो वही इलाही के अमीन हैं। ये सब के सब हबलिल्लाह हैं, खुदा की वो रस्सियाँ हैं जिनके लिए हुक्म होता है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 103। और तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और तफरक़े में ना पड़ो। इस घराने का हर फर्द आलम इंसानियत के लिए नमूना अमल है। और इनके दरमियान, 14 मासूमीन के दरमियान एक हस्ती, नबी की दुख्तर, मौलाए कायनात की जौजा और 11 इमामों की वालदा जनाबे फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। जिनके तवस्सुत से, जिनके वसीले से खुदा ने दोनों जहान के लिए जो बरकात नाजिल फरमाई हैं वो ना किताबों में समा सकती हैं और ना हमारी अक्लों में आ सकती हैं। हमारे लिए इतना जान लेना काफ़ी है कि वो ऐसे मासूमों की माँ हैं जो वली भी हैं और इमाम बरहक भी हैं, और ये मुअज़्ज़मा इस्मत कुबरा और शफिया रोज़ जज़ा की मंजिल पर फ़ाइज़ हैं। और फ़ातिमा तो बिज़ात मिन्नी के तहत रिसालत और नबूवत का टुकड़ा भी हैं, जिनकी खुशी में खुदा की रज़ा है और जिनकी नाराज़गी में खुदा की नाराज़गी है। यानी जिसने फ़ातिमा को राज़ी किया उसने खुदा और रसूल को राज़ी किया, और जिसने जनाबे सैयदा को तकलीफ़ पहुँचाई उसने खुदा और रसूल को तकलीफ़ पहुँचाई। इस रिवायत को तमाम शिया सुन्नी हजरात ने पैगंबर इस्लाम से अपनी अपनी कुतुब में नकल किया है कि हुजूर ने फरमाया, जो शख्स फ़ातिमा को तकलीफ़ पहुँचाएगा वो समझ ले कि हकीकत में उसने खुदा को तकलीफ़ पहुंचाई, और जो उनसे यानी फ़ातिमा से अकीदत और मोहब्बत का इजहार करेगा उसने मुझसे अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। इन असनाद और हवालों के ज़रिए जो फरीक़ैन यानी शिया और सुन्नी के उलमा से नकल किए गए, मुकम्मल तौर पर ये साबित होता है कि ये इस्लामी मसला है। यानी सिर्फ शिया मज़हब से इसका ताल्लुक़ नहीं, इसका ताल्लुक़ इस्लाम से है। इसी बारे में आयतुल्लाह अब्दुल हुसैन अमीनी की किताब फ़ज़ाइल फ़ातिमतु ज़हरा में उलमाए अहले सुन्नत के नाम तहरीर हैं जिन्होंने अपनी किताबों में रिवायत को नकल किया। वो रिवायत जिनका मफहूम यह है कि नबी ने फरमाया, फ़ातिमा को जो कोई अज़ियत पहुँचाए उसने मुझे अज़ियत पहुँचाई, और ये भी कि ऐ फ़ातिमा, खुदा आपके गज़ब से गज़बनाक होता है और आपकी रज़ा से राज़ी होता है। खुदा ने नबी को बशारत दी थी कि हम आपको खैर कसीर अता करेंगे, और सूरह कौसर नाजिल फरमाया, ये खैर कसीर जिसकी खुशखबरी खुदा ने सूरह कौसर में रसूल को दी, इसकी तफसीर सैयदा फातिमतु जहरा सलामुल्लाह अलैहा है। दरअसल वो उन तमाम नेकियों और भलाइयों का सर चश्मा है जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम जो दीन मोहम्मद से तमाम इंसानियत और खलके खुदा को नसीब होती हैं। जब खुदा ने नबी को बशारत दी कि हम आपको खैर कसीर अता करेंगे, नबी को यकीन था कि वादा खुदा पूरा होगा और उनसे पाकीज़ा और बाबरकत नस्ल वजूद में आएगी। वादा खुदा पूरा हुआ और हज़रत फातमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया में तशरीफ़ लाई तो आपके नूरे विलायत से तमाम जहान रोशन हो गया। खुदा ने चाहा कि दुनिया में बसने वालों को अमलन औरत की अहमियत और अज़मत से आगाह करे। यही वजह है कि पैगंबर इस्लाम की ज़ुर्रियत और पाक नस्ल को उनकी दुख्तर के वजूद से करार दिया और ये फैसला फरमाया कि आइम्माए मासूमीन और दीन इस्लाम के रहबर और पेशवा तमाम के तमाम हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम की नस्ल से वजूद में आए। बहुत से लोगों ने उनके कमालात और फजाइल को छुपाने की कोशिश की मगर कामयाब न हुए। खुदा फरमाता है सूरह सफ आयत नंबर 8, और खुदा अपने नूर को कामिल करके रहेगा अगरचे कि ये काफिरों को कितना ही नागवार लगे। आयतुल्ला सैयद अली कहते हैं कि हमें खुद को इस मंबाए नूर से करीब करना चाहिए और नूर के मरकज़ से कुर्बत का लाजमी नतीजा नूरानी होना है। सिर्फ मोहब्बत के ज़रिए ही नहीं बल्कि अमल से भी नूरानी होना चाहिए, और ये वो अमल है जिसका तकाजा हमारी मोहब्बत और ईमान करता है। हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैरोकार और उनसे मोहब्बत रखने वाले ये तवक्का रखते हैं कि वो हमें अपनों में शुमार करें, लेकिन ये सिर्फ दावे से मिलने वाली चीज़ नहीं, इसके लिए अमल, कुर्बानी, ईसार और अहले बैत की पैरवी ज़रूरी है। अगर हकीकत बीन निगाहों से देखा जाए तो पूरी इंसानियत हज़रत फातमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की एहसानमंद नज़र आती है। ये मुबालगा नहीं, तमाम इंसानियत इस्लाम की अम्बिया इलाही और रसूल व आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुर्बानियों की मरहूने मिन्नत है। और ज़्यारत में पढ़ते हैं कि हम आपकी मोहब्बत और दोस्ती से सरशार हैं, तो ये जुमला हमारे कंधों पर आए जिम्मेदारियों में इजाफा कर देता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद को नबी करीम के ख़ानदान से मंसूब होने के लायक बनाएं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फातिमा इंसानों की शक्ल में हूर हैं, फातिमा सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगी। इब्ने अब्बास कहते हैं एक दिन हज़रत फातिमा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम पैगंबर के पास बैठे हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ खुदा, तू जानता है कि ये मेरे अहले बैत और मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। इनके दोस्तों से दोस्ती रख, इनके दोस्तों से मोहब्बत रख और इनके दुश्मनों से दुश्मनी रख। इनकी मदद करने वालों की मदद फरमा, इन्हें तमाम बुराइयों से पाक रख और तमाम गुनाहों से महफूज फरमा। रूहुल कुद्स के ज़रिए इनकी तायीद फरमा। फिर फरमाया, या अली, आप इस उम्मत के इमाम और मेरे जानशीन हैं, मोमिनीन की बहिश्त की तरफ रहनुमाई करने वाले हैं। मज़ीद फरमाया नबी ने, गोया मैं अपनी बेटी फातिमा को देख रहा हूँ कि कयामत के दिन एक नूरानी ऊँट पर सवार हैं जिसके दाएं जानिब 70,000 फरिश्ते, बाएं जानिब 70,000 फरिश्ते और उनके आगे और पीछे भी 70,000 फरिश्ते चल रहे हैं, और वो यानी फातिमा मेरी उम्मत की औरतों को बहिश्त में ले जा रही हैं। जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, माह रमज़ान में रोज़े रखे, खाने काबा का हज बजा लाए, अपने माल की ज़कात अदा करे और अपने शोहर की अतात करे और हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखती हो, तो वो फातिमा की शिफात के ज़रिए बहिश्त में दाखिल होगी। फातिमा दुनिया की औरतों में बेहतरीन औरत हैं। और जनाब उम्मे सलमा फरमाती हैं कि नबी से सबसे ज़्यादा शबाहत जो थी वो जनाब फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हासिल थी। सबसे ज़्यादा शबाहत नबी से जनाब ज़हरा रखती थी। एक मरतबा मौलाए कायनात ने रसूल अल्लाह से पूछा, या रसूल अल्लाह आप मुझे ज़्यादा दोस्त रखते हैं या फ़ातिमा को? नबी ने फरमाया, आप अज़ीज़ तर हैं और फ़ातिमा महबूब तर हैं। इमाम जाफर सादिक़ अलैह सलाम फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक़ अलैह सलाम कि फ़ातिमा का नाम इसलिए फ़ातिमा रखा गया कि लोगों में आपकी हकीकत के इदराक की कुदरत नहीं। वमा अदरा का माँ फ़ातिमा, और तुम्हें क्या मालूम फ़ातिमा क्या है। आयतुल्ला दस्ते गैब फिराजी कहते हैं कि हर इंसान दूसरे इंसान की हकीकत, उसके मकाम व मर्तबे को अपनी ज़ात के अंदाजे से पहचानता है, और इससे ज़्यादा उसका फ़हम व इदराक काम नहीं करता। यानी अपने हम पल्ला, अपने बराबर, अपने जैसे इंसान को तो अपनी वजह से पहचान लेता है, लेकिन जो शख्स दर्जात व कमालात में उससे बुलंद तर होता है, उसके मकाम तक पहुंचने के लिए अपनी आजजी के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसी बुनियाद पर कहा गया कि सिवाय अल्लाह और आइम्माए मासूमीन अलैहिस्सलाम के कोई भी मकाम और हकीकत फातिमतुज़्ज़हरा को उस तरह नहीं पहचान सकता जिस तरह वो है। जो कुछ हम जानते हैं वो सिर्फ अहादीस की वजह से है, जिसमें बताया जाता है कि शहज़ादी का इल्म कितना था, वो किस कदर खुदा की वहदानियत पर कामिल यकीन रखती थी, उनका दिल मोहब्बत खुदा के और इबादत खुदा के अलावा किसी तरफ माइल ना था, और किस कदर मुलाकात खुदा का शौक़ रखती थी, उनकी शौहर और औलाद से मोहब्बत भी खुदा की खातिर थी। आयतुल्ला दस्ते गैब फिराजी कहते हैं कि इन बीबी की अजमत को बयान करने के लिए ज़बानों में ताकत ही क्या है, उनकी तारीफ़ को तहरीर में लाने के लिए कलमों की जुर्रत ही क्या है। लिहाजा हर शख्स उन्हें अपने हिसाब से देखता है, जबकि वो और हैं और हम और हैं। ये बीबी के फ़ज़ाइल व कमालात के ठाटे मारते समंदर जो कुतुब की सितरों में हैं, मुफक्किर की फ़िक्र में, मुबल्लिग़ की तबलीग में मौजूद हैं, ये तो ऐसे ही हैं जैसे कि एक बहुत बड़ी सल्तनत की तारीफ़ किसी शीरखवार बच्चे के सामने की जाए। अहले सुन्नत मुहद्दिसीन की किताबों का मुतालिया करें तो देखेंगे कि पैगंबर की ज़बान मुबारक से हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मदह में बहुत सी रिवायात नकल की गई हैं। कभी शहज़ादी से नबी के सलूक को बयान किया गया है, या अजवाज नबी और दीगर शख्सियात की ज़बानी तारीफ़ की गई है। हज़रत आशा से ये मारूफ हदीस नकल की गई है कि हज़रत आशा ने फरमाया कि मैंने पैगंबर की शक्ल व शमाइल, ज़रख्शंदगी, हरकत और रफ़्तार के लिहाज से किसी को भी हज़रत फ़ातिमा से ज़्यादा शबाहत रखने वाला नहीं पाया। फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की बात करने का अंदाज़ दूसरे तमाम लोगों की निस्बत सबसे ज़्यादा नबी करीम से शबाहत रखता था। जब आप रसूल के पास तशरीफ़ लाती तो नबी आपका हाथ थाम कर बोसा देते, उन्हें अपनी जगह बिठाते, और जब नबी फ़ातिमा के पास जाते तो फातिमा वालिद के एहतराम में खड़ी हो जाती थी और नबी के दस्ते मुबारक चूमती और अपनी जगह बिठाती। हज़रत आशा से पूछा गया कि नबी के नज़दीक ज़्यादा महबूब फ़र्द कौन था। हज़रत आशा ने कहा, फ़ातिमा। उसके बाद पूछा गया कि मर्दों में ज़्यादा महबूब कौन था, तो उन्होंने यानी हज़रत आशा ने जवाब दिया कि फ़ातिमा के शौहर अली। शहज़ादी के तशरीफ़ लाने पर जो ये कहा जाता है कि नबी अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, तो सिर्फ खड़े नहीं होते थे बल्कि मुश्ताकाना अंदाज में शहजादी की तरफ कदम बढ़ाकर उनका इस्तकबाल करते थे। हज़रत उस जमाने में जब बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता था, पैगंबर ने ऐसी बेटी की तरबियत की कि ये बेटी लियाकत और शाइस्तगी की उस मंजिल पर पहुंच गईं कि खुदा के रसूल उनके हाथों को बोसा देते हैं। नबी जब सफ़र पे जाते तो सबसे आखिरी हस्ती जिनसे विदा होते वक्त मिलते वो फातिमा होती, और जब सफ़र से वापस आते तो पहली हस्ती जिनकी मुलाकात में जल्दी जाते वो फातिमा होती। नबी शहजादी से फरमाते, आपके बाबा आप पर कुर्बान है बेटी फातिमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर इजाज़त कभी भी अपनी बेटी के घर में दाखिल ना होते। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि नबी करीम शहज़ादी के दरवाज़े पर तशरीफ़ लाए, सलाम किया, लेकिन अगर जवाब सलाम नहीं आया तो वापस तशरीफ़ ले गए। नबी करीम को शहज़ादी से बेपनाह मोहब्बत थी। अंबिया इलाही को अगर किसी से मोहब्बत होती है तो ख्वाहिशात नफसानी के तहत नहीं होती, बल्कि हुसूल रिजाए इलाही की खातिर होती है। जनाबे फातिमा से जो मोहब्बत और अकीदत नबी को थी, वो फ़कत बेटी होने की वजह से नहीं थी। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिसमें रिजाए इलाही शामिल ना हो। नबी के अफ़आल और अक़वाल का दारोमदार वही इलाही पर था। कैसे मुमकिन है कि वो झुकें और बेटी के हाथ चूमें? पैगंबर के तमाम काम वही के तहत हुआ करते थे। सूरह नजम में खुदा फरमा रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो अपनी नफसानी ख्वाहिश से कुछ बोलते ही नहीं, ये तो बस वही है जो भेजी जाती है। लिहाजा शहज़ादी के साथ जो सलूक था नबी का, वो भी खुदा की खातिर था। आप बेटी के मकाम और मर्तबे को खूब जानते थे कि वो पेशवायाने दीन की माँ हैं, इस्लाम की मिसाली खातून हैं और हर गुनाह से मासूम हैं। नबी जानते थे कि फ़ातिमा का नूर आसमान के फरिश्तों को रोशनी बख्शता है। हज़रत फातिमा मानवी एतबार से चमकता हुआ नूरे इलाही हैं। नबी फातिमतुज़्ज़हरा से बहिश्त की खुशबू सूंघते थे। नबी ने फरमाया कि खुदा ने तमाम पैगंबरों में बहिश्त की खुशबू रखी है। हूरुल ऐन में बहिश्त के चमेली के फूल की खुशबू रखी है, और फरिश्तों में बहिश्त के गुलाब के फूल की खुशबू रखी है। और ये नबियों, हूरों, फरिश्तों में जो अलहदा अलहदा खुशबू है, ये तमाम की तमाम मुकम्मल तौर पर हज़रत फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में। ये तमाम की तमाम खुशबू मुकम्मल तौर पर हज़रत फातिमतुज़्ज़हरा में है। यानी ये कहना मुनासिब होगा कि पूरी कायनात में तहत सरा से लेकर अर्श तक जितनी भी खुशबू फैली हुई है, उसका मरकज़ हज़रत फातिमा है। अब किसी कलाम की गुंजाइश नहीं कि नबी क्यों अपनी दुख्तर को इस कदर प्यार करते थे, उनको देखकर खुश होते। इसलिए कि वो बहिश्त को जाहिर करने वाली हैं, जहाँ भी जाती हैं बहिश्त की खुशबू आती थी। आयतुल्ला सैयद अली कहते हैं कि इस्लाम हज़रत फातिमा जैसी हस्ती को तमाम जहानों की औरतों के लिए नमूना अमल की हैसियत से पेश करता है। शहज़ादी की ज़ाहरी ज़िंदगी, जिहाद, इल्म व दानिश, फिदाकारी, अपने शौहर की खिदमत, एक माँ का किरदार, जौजा की हैसियत और तमाम सियासी, इंतज़ामी, इनकलाबी मैदानों में किरदार अदा करते गुजरी। इस जाफिशानी से ऐसे हालात का मुकाबला तो बड़े और नामवर हजरात भी नहीं कर सकते। आपका ये मानवी मकाम, इबादत और मानवियत से भरी ज़िंदगी पैगंबर इस्लाम और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मसावी होने की बेहतरीन दलील है। इस्लाम औरत को जिस मकाम का हामिल देखना चाहता है, उसके लिए हकीकी नमूना अमल यही खातून हज़रत फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। हज़रत फातिमा की ज़िंदगी में जो ख़ास नुक्ता पाया जाता है, आयतुल्ला सैयद अली का बयान है, वो कहते हैं कि जो ख़ास नुक्ता पाया जाता है उस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। अगरचे हमारे अंदर शहज़ादी के मानवी और रूहानी मकाम और मंजिलत को समझने की हिम्मत नहीं, इस अजीम शख्सियत की मंजिलत को खुदा जानता है या वो हस्तियाँ जानती हैं जो मकाम और मर्तबे के लिहाज से खुद उनके बराबर हों। लिहाजा आयतुल्ला सैयद अली ये कहते हैं कि लिहाजा मानवी रूहानी मकाम को बयान नहीं कर रहे, लेकिन इन अजीम शान शख्सियत की ज़िंदगी में जो अहम नुक्ता पाया जाता है वो ये कि मुख्तलिफ पहलुओं का आपकी शख्सियत में जमा होना है। एक तरफ तो आप घरेलू जिम्मेदारियाँ निभाती हैं, बच्चों की परवरिश, शौहर की खिदमत, और दूसरी तरफ कभी ना थकने वाले गयूर मुजाहिद की तरह अहम सियासी मसाइल से निमटती नज़र आती हैं। अपने बाबा की वफ़ात के बाद मस्जिद नबवी तशरीफ़ लाई, खुतबा दिया और मुसलसल अपने मौक़िफ़ का और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का दिफा किया। इसके साथ ही रात की तारीकी में महराब इबादत में पढ़ी जाने वाली आपकी नमाज़ें, खुदा के हुजूर आपका खुजू व खुशू अपनी मिसाल आप है, बल्कि बेमिसाल है। इन सबको आइंदा मजालिस में इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे। अभी बात ये हो रही है कि हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का रोशन तरीन पहलू ये है कि कि आपकी ज़िंदगी में ये तीनों पहलू पाए जाते हैं। आपने इन तीनों पहलुओं को एक दूसरे से अलग नहीं किया। बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं कि जो शख्स इबादत पे मशगूल हो जाए वो बस आबिद है, दुआ और ज़िक्र ही कर सकता है, वो सियासी इंसान नहीं बन सकता। हमारे यहाँ के सियासतदान की बात नहीं हो रही है, बल्कि सियासत के मुख्तलिफ मानी हैं जिनमें तदबीर मुमलिकत है, मामलात मुल्की और नज़्म व नस्क वगैरह शामिल है। सियासत का वसी मफहूम है और किताब मीज़ानुल हिकमत में मौलाए कायनात की अहादीस हैं कि मौलाए कायनात ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सियासत अदल है। जुल्म बहुत बुरी सियासत है, नरमी बहुत अच्छी सियासत है। अपने बारे में परहेजगारी की सियासत को अपनाओ। दीन की सियासत बेहतरीन परहेजगारी और अच्छे यकीन के साथ है। ये सब मौला के अकवाल थे। यानी अच्छी सियासत भी होती है और बुरी सियासत भी होती है। हमने चूंकि बुरी सियासत देखी है, लिहाजा हम सियासत को बुरी चीज़ समझने लगे हैं। किसी चीज़ या लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल करने से वो चीज़ बुरी या गलत नहीं हो जाती है। ये वजाहत इसलिए है कि लफ्ज़ सियासत से गलत मतलब ना लिया जाए। बात ये हो रही है कि आयतुल्ला सैयद अली ये कहते हैं कि बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं कि जो शख्स सियासतदान है और जिहाद फी सबीलिल्लाह के मैदान में पेश पेश है, तो अगर वो औरत है फिर वो एक घरेलू औरत, एक बेहतरीन माँ और बेहतरीन जौजा का किरदार अदा नहीं कर सकती, और अगर वो मर्द है तो एक आम फर्द की तरह काम काज, रोज़गार वगैरह ये सब काम वो नहीं कर सकता। क्योंकि लोगों का ख्याल है कि ये चीज़ें एक दूसरे की ज़िद हैं, जबकि हकीकत यह है कि इस्लाम की नज़र में ये तीनों पहलू न सिर्फ ये कि एक दूसरे की ज़िद नहीं, बल्कि एक इंसान कामिल की शख्सियत की तकमील में मददगार भी बन जाते हैं। लिहाजा दुनिया भर की इनकलाबी ख़वातीन भी शहज़ादी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की मुख्तसर ज़िंदगी से दर्स हासिल कर सकती हैं। शहज़ादी ने इनकलाब के घराने में आँख खोली। पूरा बचपन ऐसे वालिद की आगोश में गुजारा जिनकी पूरी ज़िंदगी अजीम शान जद्दोजहद से इबारत थी। ये बीवी फातिमा अलैहिस्सलाम बचपन में मक्की दौर की सख्तियाँ झेल चुकी थी, शेब अबी तालिब की भूख प्यास को बर्दाश्त किया था और मदीने हिजरत करने के बाद एक ऐसे मुजाहिद की शरीक हयात बनी जिनकी पूरी ज़िंदगी जिहाद फी सबीलिल्लाह में गुजरी। आपके शौहर मौलाए कायनात मुसलसल मैदान जंग को संभाले हुए थे और इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद शहज़ादी का घर तमाम मुसलमानों के लिए एक एकेडमी की हैसियत रखता था। शहज़ादी फातिमा पैगंबर इस्लाम की मुश्किल कुशा बेटी हैं। आपने हजरत हसनैन, जनाब ज़ैनब व उम्मे कुलसूम जैसी औलाद की तरबियत की, मौलाए कायनात जैसे शौहर का ख्याल रखा, पैगंबर इस्लाम जैसे वालिद की खुशनूदी को मलहूज रखा। ज़िंदगी के तमाम शोबों में आपका जिहाद नमूना अमल रोल मॉडल की हैसियत रखता है, चाहे इस्लाम के दिफा में हो या इमामत व विलायत के दिफा में, या पैगंबर इस्लाम की हिमायत में हो या अफवाज इस्लामी के अलमबरदार हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की देखभाल के सिलसिले में हो। वो शहज़ादी फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिनके बारे में नबी करीम फरमाते हैं, बैतुल अहज़ान की रिवायत का ख़ुलासा है कि नबी ने फरमाया, फ़ातिमा अव्वलीन और आखरीन की ख़वातीन की सरदार हैं और वो मेरी पाराए तन हैं, मेरी आँखों का नूर हैं, मेरी रूह हैं, मेरा दिल हैं। जब भी मैं फ़ातिमा को देखता हूँ तो मैं उनके मसाइब और आलाम को याद करता हूँ जो मेरे जाने के बाद फ़ातिमा पर वारिद होंगे। गोया मैं अपनी आँखों से ये मंज़र देख रहा हूँ कि उसके घर को परेशानी ने आ लिया है और लोग मेरे बाद उसका एहतराम नहीं कर रहे। उसका हक़ गसब किया गया है, उसे हक़ मीरास से महरूम कर दिया गया है, उसका पहलू शिकस्ता हो चुका है, उसके मोहसिन को शहीद कर दिया गया है, और उस वक्त वो मुझे या मोहम्मदा कहकर मदद के लिए पुकार रही है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ पर जवाब देने वाला नहीं है। वो मदद तलब कर रही है लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आता। वो मेरे बाद हमेशा गमगीन है। वो कभी वही के सिलसिले के मुनक़ता होने पर रोती है और कभी मेरी जुदाई को याद करके रोती है, और आधी रात के वक्त घबरा जाती है क्योंकि उसे मेरी तिलावत कुरान की आवाज़ नहीं सुनाई देती। वो उन लम्हात को याद करती है कि वो अपने बाबा की ज़िंदगी में किस कदर मोहतरम थी, लेकिन अब उसका एहतराम मलहूस खातिर नहीं रखा जाता। उस वक्त खुदा अपने फरिश्तों को उसका मोनिस करार देगा। फरिश्ते फातिमा से बातें करेंगे जैसा कि वो मरियम से किया करते थे। फिर गोया ये मंज़र भी मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि मेरी बेटी दर्दमंद है और बीमार है, उसे तीमारदार की ज़रूरत है। अल्लाह मरियम बिनत इमरान को उसकी तीमारदारी के लिए रवाना करता है और वो उसकी तीमारदारी करती हैं। उस वक्त मेरी बेटी बारगाह खुदा में यूँ राजो न्याज कर रही है, खुदाया मैं ज़िंदगी से सेर हो चुकी हूँ, मैं थक गई हूँ, अहले दुनिया से मैंने बहुत दुख उठाए हैं, अब मुझे मेरे बाबा के साथ मुलहिक फरमा और अल्लाह उसे मुझसे मुलहिक करेगा। वो मेरे ख़ानदान में सबसे पहले मेरे पास गमगीन हालत में आएगी, इस हालत में कि उसका हक गसब किया जा चुका होगा और उसे मार डाला गया होगा, और उस वक्त मैं खुदा के हुजूर अर्ज़ करूँगा, खुदाया जिन लोगों ने उस पर जुल्म किया है उन्हें अपनी रहमत से दूर फरमा, और जिन लोगों ने उसका हक गसब किया है उनसे पूरा बदला ले, जिन लोगों ने उसे परेशान किया उन्हें ज़लील ख़्वार फरमा, और जिन्होंने इसके पहलू को ज़ख्मी किया है और जिन्होंने इसके मोहसिन को शहीद किया है उन्हें हमेशा के लिए दोज़ख़ में दाखिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नाका अंतस्समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।